से बूंदे अमृत के दिल में गूंजे धुन वो प्यारी मुरली की।
ओम शांति।
अव्यक्त मुरली 31 मार्च 2011। पहला प्रश्न, इस मुरली का मुख्य विषय क्या है? उत्तर, दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री बनना। दूसरा, स्वराज्य अधिकारी बनना। तीसरा, मनसा सेवा द्वारा दुखी आत्माओं के आधार मूर्त बनना। पहला, टेंशन फ्री। दूसरा, स्वराज्य अधिकारी। तीसरा, मनसा सेवा। बाप दादा आज बच्चों के मस्तक पर कौन कौन सी रेखाएं देख रहे थे? भाग्य, स्नेह, ज्ञान, दिलाराम से लवलीनता, ज्ञान के खजाने और हर कदम में पदम की रेखाएं। तीसरा प्रश्न, संगम युग को सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहा जाता है? सारे सृष्टि का अमृत वेला है और
संगम युग को सर्वश्रेष्ठ युग क्यों? क्या सतयुग सर्वश्रेष्ठ नहीं है? क्या त्रेता सर्वश्रेष्ठ नहीं है?
यह आधार है और
एक जन्म में
परमात्मा अवतरण और
संगम युग सर्वश्रेष्ठ
सारे कल्प का आधार है।
कल्प का आधार और आत्मा के उन्नति का समय है और संगम युग कहाँ है?
हमारे अंदर।
संगम युग किसका नाम? वो चेतना की अवस्था है। ये वास्तव में युग बाहर नहीं है, ये चारों ही युग किधर है? हमारे ही भीतर। यदि हम संगम युग में भी है परंतु यदि चेतना कलयुग में है तो हम कलयुग में है। तो ये नाम युगों के नाम नहीं है, ये चेतना के नाम है। अंदर से हम किस चेतना में रह रहे हैं? संगम युग को सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहा जाता है? और सदगति शब्द बदलो और जमा का खाता अभी खुलता है
और संस्कार परिवर्तन करने का,
संस्कार परिवर्तन और परमात्मा मिलन और रिटर्न जर्नी।
हिसाब किताब का युग है।
दोनों चीजों का कंट्रास्ट यहाँ किया जा सकता है। सतयुग में ये काम नहीं हो सकता।
मंथन क्रांति बहानी होगी यहाँ पर।
यहाँ मंथन क्रांति हो गई।
सेल्फ रियलाइजेशन का समय है।
सेल्फ रियलाइजेशन का समय
और डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने का समय और
जैसे साल में एक महीना होता है कमाई करने का, तो ये कमाई करने का महीना है, बाकी युग है वो सिर्फ इस कमाई को क्या बोलते खाने का या युग है।
तो ये इंडल्जेंस का युग है, यहाँ पर डिस्चार्ज होता है, डिसिपेशन, यहाँ पर भरना है,
उड़ान भरने का समय है।
उड़ान भरना या फिर कमाई करने का है। यहाँ कमाई जो की है वो खत्म होती है,
यूज करने।
ये समय एक लॉटरी के रूप में है और
वरदानी समय है। ये
यहाँ पर वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं और यहाँ समय को वरदान है, आत्माओं को तो वरदान है ही,
पर आत्माओं से ज्यादा इस समय को ही वरदान है। इस समय में जो कुछ किया जाएगा वो श्रेष्ठ होगा अपने आप। समय ही कल्याणकारी है, बीज बोने का समय और परमात्मा अनुभव करने का समय और पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग है और जड़ है। और तो इस टॉपिक को अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है, कुछ समय से संबंधित, आत्मा से संबंधित, कुछ परमात्मा से संबंधित, कुछ कर्म के संबंधित। कोई भी जो टॉपिक है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है अलग 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 सेक्शंस में, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए। कोई भी टॉपिक हो उसको क्या करना है, डिवाइड इनटू सेक्शंस, और फिर उस सेक्शन में हम डालते जाए। संगम युग को सर्वश्रेष्ठ युग कहा जाता है, यह प्राप्ति और भाग्य जमा करने का युग है। मुरलियों में आया, मुरली में भाग्य लिखने का है। कुछ भाग्य से संबंधित, कुछ कर्म से संबंधित, कुछ आत्मा से संबंधित, कुछ परमात्मा से संबंधित, कुछ समय से संबंधित, ये अलग अलग उसके कारण हो सकते। कोई भी टॉपिक उत्तर देने से पहले क्या करना है, उसको डिवाइड करना है इसमें सेक्शंस में, और उस सेक्शन में उस रिलेटेड चीजों को डालना है। दूसरा प्रश्न, स्वराज्य अधिकारी बनने का वास्तविक अर्थ क्या है, इसको भी सेक्शंस में डिवाइड करो। स्वराज्य अधिकारी अर्थात पांच बातों पर स्वराज्य अधिकारी, कौन सी? सबसे पहला कर्मेंद्रिय, दूसरा मन बुद्धि, चौथा शरीर बॉडी। पांच चीजों पर अधिकार अर्थात स्वराज्य अधिकारी हमने सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। यह स्टेप नंबर वन। अंतर है, दोनों में अंतर है। परिस्थितियों को कंट्रोल करना, परिस्थिति वास्तव में हमारे वश में नहीं, हमारे रिएक्शन उसके कंट्रोल में।
मन की उपज है वो तो, परिस्थिति हमारे मन की उपज है।
मन की उपज भी है और परिस्थितियां है भी, परिस्थितियों का अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व भी है। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने का क्या है, उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में स्टेप नंबर टू, कोई मुरली है यहां पर नहीं, आज की जैसे ये मुरली है, तो इसमें क्या होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, और ये पहले से बने हुए पैराग्राफ्स है। हमें क्या करना है, हमें एक एक पैराग्राफ को और टुकड़े टुकड़े करने हैं, क्योंकि इस एक पैराग्राफ में कितने टॉपिक है ये पता नहीं। इसके लिए स्टेप नंबर, सबसे मुरली स्टडी की सबसे कम उपयोगी, सबसे कम फायदेमंद विधि है ऐसे अंडरलाइन करना, मुरली पढ़ना और ऐसे ऐसे अंडरलाइन करना, इधर लिखना, पैराग्राफ्स बनाना, इससे कुछ भी याद नहीं रहता। यहां पैराग्राफ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये जो मेथड है दिस इज द लीस्ट फायदेमंद विधि। ये मेथड से आप उसको याद नहीं रख सकते, इसको आपको कहीं और लिखना या मोबाइल पर अलग से उसके पार्टीशंस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आप इतना कॉपी पेस्ट करो, सबके पास मोबाइल है, कॉपी पेस्ट हो गया, फिर पढ़ो और जहां टॉपिक एंड हो रहा है वहां से उसको हटाओ और फिर दूसरे बॉक्स में डालो उसको, फिर तीसरे, तो इसके ही तीन बनेंगे ताकि, और फिर उसको हम टॉपिक देंगे, इसका टॉपिक क्या है, इसका टॉपिक क्या है, इसका टॉपिक क्या है। तो ये जो पूरा टेक्स्ट है, सबसे पहला काम है इसके टुकड़े टुकड़े करना, पूरे कंप्लीट टेक्स्ट के टुकड़े टुकड़े कर देना और उसको इस डायमेंशन से निकाल कर किसी और डायमेंशन में डालना, मोबाइल या तो अपनी किताब, बुक या डायरी, उसको डायरी में डालो, यहां से निकाल के उसको डायरी में डालो, यहां से निकाल के डायरी में डाला। क्योंकि ये जो हमने पढ़ा और ये जो अंडरलाइन किया, ये नहीं याद रहेगा, आप इसको अगली बार पढ़ोगे तो कुछ पता नहीं रहेगा ये, पर वो जो अपने हाथ से आपने लिखा या अपने हाथ से आपने डेकोरेट किया इमोजिस डालकर, वो आपको याद रहेगा। तो इसके लिए अपना ही एक ग्रुप बना सकते हैं व्हाट्सएप का, उसमें इसको पेस्ट करो, फिर उसको सजाओ, इसको सजाओ, इसको सजाओ, तीन भाग में। फिर ये फर्स्ट स्टेप है, ये आपने कर लिया, उसके बाद में फिर आगे की स्टेजेस इजी हो जाती है। जैसे आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटो में कोई कोई में कोई बच्चों के, हम इसी को पढ़ते हैं, ये मुरली है 31 मार्च 2011। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटो में कोई कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे, हरेक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारों की चमक देख रहे। तो यहां ऐसे बहुत सारी चीज है, तो यहां हम उसको चेंज कर दे, मस्तक फोरहेड, मस्तक नैनों से स्नेह की रेखाएं, फर्स्ट पॉइंट हो गया मस्तक, सेकंड पॉइंट हो गया स्नेह, हमने यहां से एक्सट्रैक्ट किया, दूसरी तरफ पेस्ट किया, उसको सजाया और पॉइंट्स बना दिए। अभी उसके फर्स्ट पॉइंट मस्तक, सेकंड पॉइंट नैन, मुख में ज्ञान की रेखाएं, दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखाएं, हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखाएं, पांव में हर कदम में पदम में कदम पदम कदम में पदम की रेखा, हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। यहां तक हमारा एक पैराग्राफ हो गया, हमने एक पैराग्राफ में कितने पॉइंट्स बनाए, 1 2 3 4 5, ये हो गया। दिस इज ओनली वन कट, नाउ पेस्ट इन अनदर, दूसरा आगे क्या होगा, अभी हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है, ऐसा भाग्य आपके बिना और किसका भी नहीं है। नाउ ये अंडरलाइन करने की पॉइंट है, ऐसा भाग्य और किसी का नहीं है, इंडिपेंडेंट सेपरेट, और यह भाग्य अविनाशी बन जाता है, क्यों, क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। इस संगम युग पर ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता रहता है, यह संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। यहां पूरा हुआ, यहां पे अभी नेक्स्ट, सर्व प्राप्तियों का, जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त करता है। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते, संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठते श्रेष्ठ है। मतलब इसमें कम से कम हमने कितने बना दिए, 3 से 4 पैराग्राफ बना दिया। तो स्टेप नंबर 1 क्रिएट पार्टीशंस, मुरली में क्या करना है, टुकड़े टुकड़े कर देना है उसके। आप लिख सकते हैं तो उसके लिए समय चाहिए, और जो बेरोजगार तीव्र पुरुषार्थी है वो ये काम कर सकते हैं, जिनकी कोई सेवाएं नहीं है, जो सभी सेवाओं से फारिग हो चुके हैं, जिनके कोई ड्यूटीज नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं, जिनके ऊपर कोई बॉस नहीं है, वानप्रस्थी पर जिनको ड्यूटीज है, टाइम कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ढेर सारी, टाइम कम है, तो उनको मोबाइल में या तो नोट आता है उसमें करो, या व्हाट्सएप में करो, टेलीग्राम में करो, सिग्नल में करो, कहीं पर भी। तो हमारी मुरली डेट, अभी उसमें ये एक पैराग्राफ हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ये बना के हमने छोड़ दिया। फिर दोपहर में अचानक इसको देखेंगे तो हम जरूरी नहीं यहां ही देखेंगे, हम नीचे का देखेंगे, संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है, ये एक लाइन हमने पढ़ ली। अब यहां चिंतन स्टिमुलेट होगा, संगम युग प्राप्तिया शब्द हटा दो, दूसरे कौन से शब्द डाल सकते हैं, खजानों का युग है, प्राप्तियों का युग है, मौजों का युग है, कल की मुरली में भी था, ये मौजों का युग है, वरदानों का युग है। शब्द हमने एक शब्द हटा दिया बस,
अब चिंतन कैसे स्टिमुलेट होगा, यहां पर खजानों को हमको रिप्लेस करना है, दूसरा शब्द डालना है, वरदानों का युग, कमाने का युग, मितियों का युग, समर्थियों का युग, सेविंग का युग, खुशी का युग, नाचने का युग, गाने का युग, मौज करने का युग, रिफ्रेशमेंट का युग, मिलन का युग, अतिंद्रिय सुख प्राप्त करने का युग, कौन सा बैकअप, रिटर्न जर्नी का युग। देखो कितने पॉइंट्स आ गए, नहीं तो ये मुरली हमारी पढ़ के हो गई और ये चिंतन नहीं होगा, हमने क्या कर दिया उसका टुकड़े टुकड़े किए। तो इसके जब तक आप पार्टीशन नहीं करोगे चिंतन स्टिमुलेट नहीं होता है, नहीं तो ऐसा तो पढ़ते ही आ रहे। इनफैक्ट ये जो मेथड है पढ़ने की, दिस इज द वर्स्ट मेथड जो हमको सिखाई गई है। लाइन अंडरलाइन करो या कलर से अंडरलाइन करो या इधर लिखो या इधर लिखो, इससे कोई चिंतन स्टिमुलेट नहीं होता है। आप इस लाइन के विषय में नहीं सोच सकते ज्यादा, आपका बुद्धि इधर ही कहीं ना कहीं जल रहेगी। और ये जो हेडिंग है इसको तो छोड़ ही देना है, क्योंकि मुरली में ढेर सारी पॉइंट्स है। अगर हम हेडिंग पे फोकस कर जाते हैं तो हमारी बुद्धि इसी टॉपिक को ढूंढने लगती है, बेफिक्र बादशाह कहाँ है, और उसमें तो बेफिक्र का केवल एक पैराग्राफ था, बाकी तो कुछ और ही था, बहुत सी बातें थी। वो भी कर सकते हैं, हेडिंग बनाना ही क्यों है, आप ये यहां से पढ़ना चालू करो, ये तो हम लोगों ने बनाया है ना, वो बनाना बहुत अच्छी बात है जो बनाए हैं मुरली में, ये रखने के लिए, याद रखने के लिए वगैरह वगैरह। तो हाँ उस पर वो टंगाया हुआ है सारा, सारों का सार उस हेडिंग में, पर आपको चालू यहां से कर। बाबा जब आते हैं तो बाबा ऐसा थोड़ी ना कहते हैं आज की मुरली की हेडिंग ये है, अभी मैं मुरली चालू करता हूं आज, ये तो हमने तैयार किया हुआ है। हाँ वो पैराग्राफ, बाबा की मुरली में पैराग्राफ होते है क्या, वो कहते हैं अच्छा अभी बच्चों एक पैराग्राफ पूरा हुआ, अभी मेरा सेकेंड पैराग्राफ चालू करता हूं। पैराग्राफ भी हमारे तो उसका तो एक कंटिन्यूअस टेक्स्ट है, ऊपर से चालू होता है लास्ट तक, ना उसमें कोई पैरा खत्म होता है, कुछ भी नहीं होता है। आपको पैरा इसलिए बनाने हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का टेक्स्ट है, इसका अगर हमें चिंतन करना है तो हमें इसके टुकड़े टुकड़े ही करने पड़ेंगे। इसमें एक मुरली में कम से कम 30 से 40 पैराग्राफ रोज बनने चाहिए, और साकार मुरली में उससे भी ज्यादा।
AI का यूज नहीं करना है,
नहीं करना है, वो करेंगे तो आपका इंटेलिजेंस का हैजक कर देता है AI, बुद्धि खत्म होती है चलना। AI सबको रिप्लेस कर रहा है, सिंगर्स, लेखक, फिल्म मेकर्स, स्पीकर, सब कुछ कर देता है, टॉपिक्स भी बना के देगा, सब कुछ करके देगा, पर फिर चिंतन नहीं होगा। इसलिए चिंतन की विधि क्या है, मुरली को सीधा पढ़ना ही नहीं है, उसको सबसे पहला काम है उसके टुकड़े टुकड़े पार्टीशन कर देना है, और ये काम हो गया फिर एक एक पार्टीशन को एक एक हेडिंग बाद में दे सकते हैं आप अगर चाहे तो मार्क करके। तो प्रश्न क्या था, संगम युग सर्वश्रेष्ठ युग कहा जाता है। अगला, स्वराज्य अधिकारी बनने का वास्तविक अर्थ क्या है। तो हमने स्वराज्य अधिकारी टॉपिक को क्या किया, पांच भागों में विभाजित किया। तो सबसे पहला क्या कहा है, मन, तो मन को वश में करना, मन में क्या है, विचार, विचारों को वश में करना, बुद्धि, बुद्धि जो निर्णय लेती है, बुद्धि जो भटकती है उसको स्थिर करना, संस्कार, संस्कार बहुत सूक्ष्म है क्योंकि ऑटोमेटिक है, हैबिट, संस्कार, स्वभाव, ये हमारे रिपीटेड पैटर्न की वजह से क्या हो गया, वो अपने आप काम करते हैं, इसलिए हम न चाहते हुए भी अपने आप वो होते। अगर बुरे संस्कार अपने आप काम करते हो तो अच्छे भी अपने आप करेंगे। चिंतन करना ये एक संस्कार है, मंथन करना एक संस्कार है। जब हम ज्ञान का मंथन करते हैं तो जीवन में जो समस्याएं, परिस्थितियां, विघ्न, प्रॉब्लम्स आते उसका भी हम मंथन करना सीखते हैं। हमारी अपनी कोई कमी उसका भी मंथन करना सीखते, तो संस्कारों पर जैसे कोई आदत ही बन गई है किसी को,
एक आदत हो गई, आदत कुछ भी हो सकती है। उठो, उठने के बाद वापस थोड़ी देर 10 मिनट सोने की आदत, ये भी एक हैबिट है, चाहे कितने भी बज रहे हो, क्योंकि आदत बन चुकी है। बारिश हो रही होती है, एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि मैं बहुत परेशान हूं, बारिश हो रही है और मेरी पत्नी मार्केट में गई है। वो कहता है इतना परेशान होने की क्या बात है उसमें। वो कहता है बारिश तेज हो रही है। वो कहता है ठीक है, वो कोई गल थोड़ी ना जाएगी बारिश से। वो कहता है बहुत तेज बारिश हो रही है। उसका मित्र कहता है कोई बात नहीं, वो कोई दुकान होगा वहां खड़ी हो जाएगी। तो यही तो प्रॉब्लम है, जिस दुकान में जाती है उधारी करके आ जाती है। प्रॉब्लम इज दिस। तो उधार ये भी एक हैबिट ही है, जरूरत हो ना उससे कोई लेना देना ही नहीं है, आदत है वो। जैसे किसी किसी को चोरी करने की आदत होती है, उसको वो चीज चाहिए नहीं है, हैबिट हो गई है। जैसे कुछ दिखा पेन वगैरह ले लिया चुपचाप, उसको चाहिए ही नहीं वो, और उसको पता है कि मैं ये खराब कर रहा हूं, पर वो करे क्या। वो कोई बड़ी चोरी नहीं करते, छोटी मोटी चोरी करते, क्योंकि हैबिट हो गई है। किसी भी चीज का बार बार दोहराव हो तो वो आदत बन जाती है। शरीर, शरीर अर्थात शरीर को स्थिर रखना, शरीर को स्थिर रखना, ये क्या है, एक साधना है। इसको कहते हैं शरीर का मौन। एक है वाणी का मौन, मन का मौन और शरीर का मौन, अधिष्ठान। तो शरीर पर जीत अर्थात स्थिर खड़े बैठे रहना, एक ही मुद्रा में बैठना बिना हिले डुले लंबा समय तक, और शरीर में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है उसको देखना। हर क्षण शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनुभूतियां है, उन अनुभूतियों का अनुभव करना। बैठ गया है पूरे शरीर का निरीक्षण करना, बॉडी स्कैन करना, अनुभूति करना। अगर कहीं दर्द हो रहा है तो उस दर्द को साक्षी होकर देखना, उस दर्द का इपिसेंटर ढूंढना। अभी घुटनों में दर्द हो रहा है तो एग्जैक्टली कहां दर्द हो रहा है, उसका सेंटर कहां है, सेंटर पॉइंट उसको ढूंढना है। वो दर्द धीरे धीरे विलीन हो जाएगा, अनुभूति होगी कि अब ये दर्द नहीं रहा, फिर यहां हो रहा है, फिर यहां हो रहा है। तो राज्य अधिकारी का अभ्यास शरीर पर अर्थात शरीर को स्थिर रखने का अभ्यास, एक। दूसरा, सहने का अभ्यास। बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ये क्या है, मन की कंडीशनिंग है। सोच के ही रखा है कि मुझे ठंडी ज्यादा लगती है, मुझे गर्मी ज्यादा होती है। ये शरीर जीत का अभ्यास नहीं है। शरीर जीत अर्थात शरीर सब कुछ सहन करे, सर्दी गर्मी सब कुछ। कितना हम कंप्लेन करते हैं कि मुझे गर्मी बहुत हो रही है, मुझे गर्मी बहुत हो रही है, तो और होती है। जितना हम सोचते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ मैं तो नहीं चढ़ सकूंगा, मैं तो थक जाता हूं, मुझे तो जल्दी थकान होती है, हम तो नहीं चल सकते। तो ये सारा जो है ना, एक तो शरीर सब कुछ सहे, सर्दी गर्मी सब कुछ प्रकृति से जो भी आता है। दूसरा, पेन। हम देखते हैं दो पेशेंट आते हैं, एक पेशेंट चुपचाप सहन कर लेता है, दूसरा जरा सा भी नहीं सहन कर सकता है। पेन कैपेसिटी, पेन सेंसिटिविटी हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। किसी किसी को थोड़ा सा भी दर्द सहन नहीं होता है, और किसी किसी को एकदम सहज सहन कर लेता है। कोई इंजेक्शन देखते चक्कर खा के गिर जाते केवल देखने मात्र से। तो ये क्या है, चलो बचपन में हर एक का बैकग्राउंड अलग अलग रहा, वो जो भी रहा, पर अभी प्रैक्टिस तो की जा सकती है, दर्द को सहन करना, इसको कहते हैं तितिक्षा। तितिक्षा संस्कृत में शब्द कौन सा है? तितिक्षा। हिंदी में, इंग्लिश में अलग अलग शब्द है। सबसे निचला शब्द है टॉलरेंस, सहन करना। उसके थोड़ा सा ऊपर का शब्द है एंड्यूरेंस, ज्यादा सहन करना। उसके ऊपर और एक शब्द है फोरबेरेंस, उसके ऊपर शब्द है तितिक्षा संस्कृत, और उसके भी ऊपर शब्द है स्पार्टन सिंप्लिसिटी। स्पार्टन नाम का एक देश था जहां के सिपाही इतना सहन करते थे, इतना कि उनके नाम से यह शब्द निकल पड़ा है, स्पार्टन। सब कुछ सहन कर सकते थे, हजार ऐसे खड़े रहते थे तो बस खड़े ही रहते थे, वो जैसे वहां गुलाम लोग थे उस समय, तो गुलामों को बहुत सहन करना पड़ता था, बिना थके खड़े रहते थे घंटों बिना हिले डुले तो। और वहां के सैनिक भी बड़े मजबूत थे। तो ये सब क्या है? शरीर का पर राज्य करना, उस पेन को सहन करना, प्रकृति के आघात को, प्रकृति में जो अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं उसको सहन करना। तीसरा, बीमारी को सहन करना। बीमारी के समय टूट नहीं जाना, कोई कुछ कुछ पेशेंट बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, अब मेरा क्या होगा, मुझे बहुत थकान हो रही है, और रोना चालू करते हैं। अरे थकान के लिए रोने का क्या काम है? मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं रोना चालू, मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, रोना चालू, ये क्या? इतना कमजोर मन, छोटी सी बीमारी हो गई सोचने लगते अरे बाप रे अभी क्या करें, मेरा तो अभी बस जीवन ही पूरा हो गया। समय का महत्व तो मालूम है, पर दुखी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा उदासी छा जाती है। छोटी सी सर्दी खांसी हो गई उसमें भी दुखी हो जाते हैं, पता नहीं जैसे इसमें से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो तीसरा है बीमारी, राज्य अधिकारी अर्थात बीमारियों को सह लेना। ठंडी गर्मी बारिश, बारिश हो गई हम भीग जाएंगे, जुकाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगला एक टेंडेंसी ये मुझे सूट नहीं करता, ये पहले से ही सोच के रखा है, ये भोजन मुझे सूट नहीं करता, वो मुझे सूट नहीं करता, ये मुझे सूट नहीं करता, ये पहले से ही फिट करके रखा है। तो जो जिसने माना है वो होगा, क्योंकि तुमने पहले से मान के रखा है ऐसा मुझे ये नहीं होता है तो होगा ही नहीं, और उसके पास पुराने प्रूफ भी है जीवन के, इसलिए और वो कंफर्म हो जाता है। एलर्जीज, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी एलर्जी साइकोलॉजिकल भी होती है, वास्तव में एलर्जी तो होती है डेफिनेटली, पर कई बार पेशेंट सोच के रखता है कि ये ऐसा है। तो ये सारे क्या है? शरीर को मजबूत, और ये सब के लिए उपाय है जिससे अहंकार टूटता है। अहंकार को कम करने की विधि क्या है? एक्सरसाइज, क्योंकि दूसरा हमसे अधिक अच्छा कर सकता है, हम नहीं कर पाते वो, तो इससे अहंकार पर थोड़ा सा आघात होता है और ये होना भी चाहिए। रनिंग, दूसरा हमसे तेज दौड़ता है पर यहां इच्छा से नहीं होगा कि मैं इच्छा करूं और हो जाए, इसमें तो प्रैक्टिस चाहिए, रोज अगर प्रैक्टिस होगी तो होगा, वो नहीं तो नहीं होगा। योगासन, थाई ची, शिगोंग, प्राणायाम, किसी की कैपेसिटी बहुत है, ऐसे पर्वत पर लोग आराम से चढ़ जाते जो पर्वत क्षेत्रों से आए हुए हैं, और जो शहरों में पले बड़े हैं, बर्गर बेबीज, बर्गर बेबीज पता है क्या? बर्गर बेबी ये भारत का शब्द नहीं है, पाकिस्तान का शब्द है बर्गर बेबी, अर्थात जरा सा भी उनको इधर उधर का सहन नहीं होता, इतना सा इधर उधर का पानी पी लिया खत्म बीमार, जरा सा कुछ खा लिया तुरंत कुछ पेट खराब, ये खराब वो खराब, एकदम नाजुक हेल्थ वाइज। और कुछ होते हैं या हमारे पास गांव के पेशेंट आते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, गिरते हैं, चोटें लगती हैं यहां पर बड़ी बड़ी, कुछ नहीं होता है, आराम से कहते हैं ये तो कितना लगता रहता है, सही भी हो जाते हैं वो लोग। और हमें तो हाथ धोने के लिए भी बिस्लरी पानी चाहिए, और वो किसी दूसरे ने टच भी ना किया हो, टच अगर किया तो एक्सट्रीमली केयरफुल रहते, वो भी अच्छा है रहो, पर अत्यंत नाजुक हो गया है शरीर। ये क्या स्वराज्य अधिकारी की अवस्था है? स्वराज्य अधिकारी अर्थात शरीर मजबूत स्ट्रांग, शरीर फ्लेक्सिबल लचीला, थर्ड फास्ट, फास्ट अर्थात क्विक। एक होते हैं जिनका काम ही डल है, चलते हैं तो धीरे धीरे धीरे, इमरजेंसी है आराम से, हर काम आराम का है,
बोलेंगे मम्मा भी ऐसे करती थी।
हाँ, ब्राह्मणों के पास हर प्रश्न का उत्तर है। डलनेस है जीवन में, हर चीज में डलनेस, धीरे 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 ही होता है। क्विकनेस जो है, डलनेस अलग चीज चीज है, रूहानियत अलग चीज है, रूहानियत इज डिफरेंट। पर एक होता है शिथिलता है जीवन में, पूरा निष्क्रिय है जीवन। जैसे मुंबई में जाओ, कैसे लोग भाग रहे हैं, लोकल ट्रेन विरार टू दादर, घुसो उसमें, आपको लोग ही आपको पहुंचा देते हैं। अंधेरी उतरना है तो अंधेरी नहीं उतर सकते, आप जोगेश्वरी उतरोगे, लोग आपको आगे लोग लेके जाते हैं। दूसरी ट्रेन लोकल लेके वापस आना पड़ता है, उतरने ही नहीं देते लोग, क्या करें। तो क्विकनेस है, तो यहां एकदम शिथिलता है, तो हमारे अंदर क्या हो, क्विकनेस भी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्ट्रांग हो शरीर, ताकि शरीर को कुछ सहना पड़े तो वो सह सके, बीमारी आए तो बीमारी को सह सके, प्रकृति के बदलाव आए। किसी को गर्मी बिल्कुल ही सहन नहीं होती, फैन अगर चला गया रात भर तो फिर अमृत वेला गया, ठंड सहन नहीं होती। इसलिए कहा था आइस वाटर बाथ, कोल्ड वाटर बाथ, नेचुरल वाटर बाथ, वो भी एक एडिक्शन ही है। इतना 40 डिग्री टेम्परेचर है फिर भी गर्म पानी ही चाहिए, क्योंकि आदत है। इट इज नथिंग टू डू विथ बाकी चीज, इसका संबंध किससे है, आदत से है। ये हो गया शरीर, अब रहा कर्मेंद्रिय, तो वो एक अलग है फिर, आंखें क्या देखना है क्या नहीं देखनी, कान क्या सुनना है ना सुनना है, मुख क्या बोलना है ना बोलना, चार पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, 10 कर्मेंद्रिय है टोटल। तो ये है स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियों पर पूर्ण राज्य करना। मन बुद्धि पर अधिकार कैसे प्राप्त होता है, पाप को सदा साथी बनाकर। हम शिव शक्ति है, स्मृति का क्या लाभ है, यह स्मृति स्वतः ही माया जीत और प्रकृति जीत बना देती है। प्रकृति जीत बनने का क्या अर्थ है, प्रकृति को सतोगुणी बनाने और उसके प्रभाव से निर्भय रहने की स्थिति। और एक है निर्भय रहना, किससे, प्रकृति से। अंधेरे से डर लगता है, तूफान आया तो डर लगता है, बारिश आती है तो डर लगता है, बिजली कड़कती है तो डर लगता है, थोड़ा सा हलचल हो जाए तो डर लगता है, अंधेरे में चलने से डर लगता है, हर काली चीज भालू जैसे दिखती है, अगर कुछ ऐसे ऐसे हो जाए तो ऐसा लगता है कहीं सांप तो नहीं है। हाँ, छिपकली से डरते हैं, कॉकरोच से डरते हैं, ये सब क्या है, भय। तो क्या यह स्वराज्य अधिकारी की अवस्था है, क्या यह स्वराज्य अधिकारी की अवस्था है, नहीं। तो हर एक को आइडेंटिफाई करना है स्वयं के फोबियाज, फोबिया अर्थात फोबियाज क्या होते हैं, मेडिकल में सेपरेट कंडीशन है ये फोबियाज। कई लोगों का एमआरआई हो ही नहीं पाता है, क्यों, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लोज्ड प्लेसेस का भय लगता है। हमारे करना है, जरूरी है, पर वो कहते वो जो घूमता है ना गोल 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 गोल, वो नहीं सहन कर सकते। उससे तो मर जाऊंगा, पर वो नहीं करना है। डायग्नोसिस नहीं हो पाता केवल क्लॉस्ट्रोफोबिया की वजह से। कई लोगों को हाइट्स का भय है, ऊपर से नीचे देखते हैं तो डर लगता है। कई लोगों को अंधेरे का डर है, किसी का पानी का डर है, अंधेरे का डर, पानी का डर, छोटी छोटी चीज है जो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। किसी को लोकल ट्रेन का डर है, भीड़ का डर लगता है, पब्लिक का डर लगता है, पब्लिक ओपिनियन का डर लगता है, एकांत का डर लगता है, अकेले रहने का डर लगता है। रात में अकेले नहीं सो सकते, कोई साथ में चाहिए बाजू में। हाँ वो तो एक अलग है, स्टेज फ्राइट, पर ये एक अलग ही भय है। इसको कोई साथ में चाहिए, नहीं तो डर लगता है। बीमारी का डर, हमको कोई बीमारी ना हो जाए। ब्लड टेस्ट लोग इसलिए नहीं करते कहीं कुछ निकल ना जाए, बोल के रखा है करो, कहते अगर कर लिया और उसमें कुछ निकल गया तो फंस गए ना, फिर अभी शांति से जीवन चल रहा है। बीमारी कब है, मृत्यु कब है, स्वजनों की मृत्यु कब है, ये सब फोबियाज में आते जाते, एग्जैगरेटेड भय होते हैं। इसकी तो बहुत लंबी लिस्ट है मेडिकल में। पानी का भय, आग का भय, तूफान का भय, अंधेरे का भय, गिरने का भय, खो जाने का भय, पुलिस का भय, कुछ भी हो सकता है, पर ये भय है, बहुत गहरे होते हैं ये सारे फोबियाज। स्टेप नंबर वन, उनको आइडेंटिफाई करना, ये मेरे अंदर ये भय है। बाहर से व्यक्ति इतना मजबूत दिखता है, बहुत स्ट्रांग, तो उसका कोई एक चीज होती है जिससे उसे भय लगता है भीतर ही भीतर। प्राकृतिक आपदाओं को देखकर ब्राह्मण आत्मा का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? प्राकृतिक आपदाओं को देखकर ब्राह्मण आत्माओं का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? सहयोग देने का और रहम दे और वाइब्रेशंस और इसमें है डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना। प्राकृतिक आपदाओं में क्या होता है, व्यक्ति डर जाता है, हलचल आता है, हलचल में आता है। अभी वेनेजुएला में अर्थक्वेक हुआ था 7.1, 7.2, टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती है। एक फुटबॉल प्लेयर था, वो कहीं बहुत उसका अखबारों में बहुत ज्यादा चर्चा आई थी, वो कहीं और था, वेनेजुएला का नेशनल फुटबॉल प्लेयर। तो वो उसकी पत्नी और दो बच्चे 70 घंटे वो लोग ढूंढते रहे डेब्रीज, उसमें मलबे में तीनों मर चुके थे। उसके लिए बहुत बड़ा शौक था, वो देश के लिए खेल रहा था और उसका परिवार गया। तो प्राकृतिक आपदाएं आती है और आएगी और ज्यादा आएगी, तो डरना नहीं है, पर आने वाले सुख में राज्य की खुशी में रहना है। यह है उत्तर। हमारी सबसे बड़ी खुशी क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी खुशी कौन सी है? हमें सत्यु आया किया है यहां की बताओ थोड़ी, भगवान का साथ और भगवान की पालना में पल रहे और सही नॉलेज मिल रहा है और वहां मेरा भाग्य और
बाहरी दुनिया से पूरा डिटैच,
बाहरी दुनिया से डिटैचमेंट, बाहरी दुनिया का प्रभाव हम पर ना हो।
झंझट ही नहीं है ना, कोई झंझट ही नहीं है तो खुश है।
क्या झंझट, कौन सी झंझट?
दुनिया भी झंझट ही नहीं ना, कि मार्केट जाओ, सब्जी लाओ, बाल बच्चों को पालो।
केवल यही झंझटें नहीं होती, झंझटें बहुत सारी दूसरी भी होती है। गृहस्थी तो बहुत बड़ी भी हो सकती है, गृहस्थी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। गृहस्थी केवल वही नहीं है जो गृहस्थियों की गृहस्थी, मन में ही गृहस्थी खड़ी हो जाती है। वो संसार तो छोड़ दिया पर इधर ब्राह्मण परिवार के अंदर ही गृहस्थी खड़ी करके रखी है और वो दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म और अदृश्य गृहस्थी है। उत्तर है और कोई उत्तर? हमारी सबसे बड़ी खुशी पुरुषार्थ में सफलता, जो बहुत लंबे समय से 10 साल से एक कमी चल रही थी और अचानक उससे हम मुक्त हो गए, ये बहुत बड़ी खुशी,
मुक्ति की खुशी,
मुक्ति की खुशी। दूसरों को तो पता भी नहीं पर हम मुक्त हो गए, इसके हमको पता है कि हम मुक्त हैं, पहले मुक्त नहीं थे अब मुक्त हैं। और स्वास्थ्य, हाँ कि हम निरोगी हैं ये बहुत बड़ी खुशी है, हमारा शरीर निरोगी है ये खुशी है। तो निरोगी शरीर,
तन मन धन जन, ये चार,
तन मन धन जन, निरोगी काया प्रथम सुख, बाकी सब मोह माया। पहला सुख है निरोगी काया, बाकी सारी मोह माया। इसलिए शरीर पर काम करते रहना, स्वास्थ्य रखना, क्योंकि बीमार होने के बाद अमृत वेला चला जाता है। ज्ञान योग बुद्धि काम नहीं करती है क्योंकि वो बीमारियों के बारे में सोचते रहता है आदमी, इंटरनेट पे जा जाके एक एक बीमारियों का रिसर्च करता है, पूरा रिसर्च करके आता है, गूगलोपैथी। हमारा सुखमय राज्य आने वाला है, ये खुशी मुरली में ये है। वैसे खुशी बहुत सारी है। मनसा सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुख, दुखी और अशांत आत्माओं को खुशी की किरणें और सकाश देना। तो कल रात को भी कहा था मनसा सेवा कितनी बार करनी है? 3 बार। तो सब एक घड़ी का चित्र निकालो और उसमें 3 टाइम अपने फिक्स करो जब आप मनसा सेवा करेंगे, घड़ी का चित्र, और कौन से टाइम है जब मैं मनसा सेवा करूंगा। योग ना करो भले पर मनसा सेवा जरूर करो, क्योंकि दुखी आत्माएं बहुत है। ये घड़ी, उसमें टाइम MS मनसा सेवा कितने बजे करनी है, 4 बजे, 1 हो गया, दोपहर का अपना टाइम लिखो और तीसरा टाइम खुद ही लिखेंगे तो अच्छा है। 3 टाइम जब हम मनसा सेवा करें, 3 टाइम मनसा सेवा को पक्का कर लेना है। हो गया, अगला प्रश्न, मनसा सेवा के लिए बाप दादा ने क्या निर्देश दिया है? प्रतिदिन निश्चित समय, निश्चित प्रतिदिन निश्चित समय निर्धारित कर मनसा सेवा करनी चाहिए। प्रतिदिन निश्चित समय निर्धारित कर मनसा सेवा करनी चाहिए, यह भगवान का आदेश। अगर भूल गए मनसा सेवा करना दिन भर तो क्या करें? एकदम रात को याद आ गई जब बहुत नींद आ रही है।
बाबा ने कहा था अगर ड्रिल दिन में नहीं करते सोने से पहले करके सो, फिर
सोने से पहले करके सो, ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही निकल जाए। जैसे एक व्यक्ति घर आता है, वो कहता है मैं तो भूल ही गया, इतनी बारिश तेज हो रही थी, मैं छाता लेके जाना ही भूल गया। आ जाता है वापस, की पत्नी पूछी थी आपको पता कब चला? वो तो पता तो तब चला मुझे जब बारिश रुक गई और बारिश का छाता बंद करने के लिए मैंने जब हाथ ऊपर किया तो पता चला छाता ही नहीं है। समझ में आया क्या जोक? भीग चुका है और उसे उसे लगा, उसे पता ही नहीं कि छाता उसके पास नहीं है। जब बारिश रुक गई तब फिर उसने ऊपर हाथ किया छाता बंद करने के लिए, तब पता चला छाता ही नहीं है। तो जीवन बीत गया बेहोशी में, पूरा दिन चला गया, पता ही नहीं चला। ये भी कोई काम भी करना है, ये हमारे उस टू डू लिस्ट में नहीं है मनसा सेवा, इसको पक्का उसमें डालना है टू डू लिस्ट। एक लिस्ट होनी चाहिए, दिन भर ये सब काम होने ही चाहिए। कंपलसरी। कौन कौन से? अमृत वेला मस्ट है। एक बकेट लिस्ट बनानी है, वो तो होना ही चाहिए। एक एक्सरसाइज कंपलसरी होना ही चाहिए। तीसरा प्रकृति, प्रकृति का सानिध्य, मुरली चिंतन, मनन, अध्ययन, स्टडी, नोट्स होना ही चाहिए। एक साकार एक अव्यक्त, ये दो काम रोज होने चाहिए। अगर हो सके तो रोज मुरली पर डिस्कशन, अच्छा वो होनी चाहिए। उसके बाद में एक्सरसाइज थोड़ा सा ब्रेथ वर्क, प्रकृति का सानिध्य, उसके बाद में फिर भोजन, उसके बाद में कर्मयोग। कर्मयोग बहुत जरूरी है। अगर कोई कुछ भी काम नहीं करता, खाली बैठे रहता है, हम खाली मुरली पढ़ेंगे योग करेंगे, धीरे धीरे डिप्रेशन और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगी। जिन्होंने जिन्होंने ये किया है उनको देखा गया है, यही सब हुआ है। इसलिए ड्यूटी चाहिए, और वो ड्यूटी भी कैसी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ड्यूटी चाहिए। आप जवाबदेही होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा सा सेवा कर लूं, कोई पूछने वाला नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वाली ड्यूटी होनी चाहिए। हाँ, जिसमें आप अगर काम ठीक से नहीं किया तो डांट पड़नी चाहिए, काम चोरी जिसमें ना हो। तो ऐसे कर्मयोग कहो, ड्यूटी कहो, सेवा करो, जो भी है। और वो लाइवलीहुड का भी एक साधन है। बिना पैसे कमाए पैसों का महत्व भी समझ में नहीं आता है। जिसने पैसे कभी कमाए नहीं है उनको पैसे की क्या वैल्यू है वो भी नहीं समझ पाते। वो उस मजदूर से पूछो, दिन भर काम करता है और आखिर में उसे पैसे मिलते हैं, उसको पता है उस पैसे की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट दिन रात पढ़ाई करते और फिर उनको कोई एग्जाम पास करते और फिर जॉब लगती है, उसको पता है उस जॉब की वैल्यू। इनको ऐसे ही पैसे मिल जाते हैं बिना कुछ मेहनत किए, उनको जीवन भर पैसों की वैल्यू का भी पता नहीं चलता है। जो आसानी से आ जाते हैं इस ज्ञान में, मधुबन में, उनको भी उसका वैल्यू पता नहीं चलता है। जो संघर्ष करके आते हैं उनको उसकी वैल्यू होती है। तो टू डू लिस्ट, शाम का क्या करना है, टू डू लिस्ट, चार्ट कहो, कितने बजे सोना है। मोबाइल के साथ हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है? मोबाइल डिजिटल रिलेशनशिप
यार डॉक्टर।
संगम युग की दो सबसे अमूल्य बातें कौन सी है? संकल्प और समय। कल भी कहा था, समय और संकल्प को सफल क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध इनसे बनती है। बाप दादा से आज कौन सा विशेष वरदान दिया है टेंशन फ्री बनने का? कल की पूरी सारी मुरली किस पर थी? बेफिक्र। तो कल रात में भी हमने 10 बातें देखी थी बेफिक्र बनने की। सबसे पहली बात थी फिक्र दे दो फकूर ले लो। दूसरी बात थी तेरे को मेरा कन्वर्ट कर दो। तीसरी बात थी सेकंड में बिंदी लगा दो। चौथी बात थी समय और संकल्प। पांचवी बात थी अलबेलापन जो है उसको क्या करो, विदाई दे दो। उसके बाद प्यार का सब्जेक्ट, उसके बाद में योग का सब्जेक्ट, उसके बाद में मधुबन निवासियों से मुलाकात, सेकंड में क्या करो, बिंदी लगाओ। पॉइंट नंबर 9, गुजरात से मुलाकात, नवीनता लाओ, ब्रदरहुड, वीआईपी वीआईपी। कल भी रात में हम कह रहे थे हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, परंतु उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी और ये सब। अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ भी जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही है, बस यहां तक पहुंचते हो। और यही भगवान है, शायद वो ये यहां तक कभी पहुंचे ही नहीं। अगर वो पहुंच गए तो उनका जो जॉब है ना वो खतरे में है। फिर टाइम की बात ही नहीं है, परंतु उनको शायद फिर लोग उनको मानेंगे नहीं जैसे वो किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन कहता है कि विरोध करो विरोधी पक्ष का। उनका प्रोफेशन, संसार भी उनसे यही एक्सपेक्ट करता है। अगर वो आध्यात्मिक बन गए तो फिर वो कम एग्रेसिव हो जाएंगे, पर जो नेता है वो कैसे चाहिए लोगों को, लोगों की अपेक्षाएं भी नेताओं से कैसे होती है, विरोधी पक्ष का विरोध करे। अगर वो अध्यात्म में घुस जाए तो ये सब करेगा क्या वो? और हमारा टारगेट क्या होता है, इन्हीं को सेवा करो, इन्हीं को पकड़ो। तो कहीं ना कहीं वो भी अच्छा है, पर थोड़ा कम कर दो तो ज्यादा अच्छा है। टू मच उसमें अगर जाए तो एनर्जी पैसा बहुत लगता है और वो यहां तक पहुंचते हैं बस। उससे अच्छा तो शिविर लगाओ, गांवों की सेवा, गरीबों की सेवा, प्रकृति की सेवा, पर उसमें क्या नाम मान थोड़ा कम मिलता है। और ये सेवा में एक प्रॉब्लम ये भी है कि व्यक्ति संस्था को बाजू में रख के स्वयं की महिमा को आगे बढ़ा देता है, इसमें नाम बहुत जल्दी जल्दी से मिलता है। फोटो चाहिए हर एक को उसके साथ।
बड़ों से पैसा भी मिलता है ना, पैसा भी मिलता है पॉलिटिशियन से।
जो पैसा सहज आ जाएगा सेवा केंद्रों पर सहज, उससे वो सेवा नहीं होगी जो गरीबों की पाई पाई से आएगा। उससे सरकार ही दे दे ये लो, उससे वो सेवा नहीं हो पाती है। यहां तो गरीबों की पाई पाई से परमात्मा तालाब भरेगा, ऐसा भगवान का कहना है। दो सेंटर, एक सेंटर है जिसमें सब लोगों ने दिन रात मेहनत करके वो बनाया है, दूसरा है सरकार ने बना के दे दिया, ये ले लो तुम सेवा करो। कि सेवा किसमें ज्यादा है? इसमें मेहनत है, उसमें चापलूसी करनी पड़ती है, उनके आगे पीछे घूमना पड़ता है। प्रेमानंद जी महाराज वो जाते हैं किसी के पास, लोग उनके पास आते हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम जाते हैं सबके पास। देखा है ना उनको, उनका एक बहुत सुंदर वीडियो है जिसमें वो कहते हैं जीवन निकल गया पर भगवान नहीं मिला, आंसू आ रहे हैं।
कोई तो मिला दे मुझे,
कोई तो मिला दे भगवान से। तो ये सेवा बहुत अच्छी है, वीआईपी सेवा, बट इसमें ट्रैप भी है, बहुत कुछ करना पड़ता है इसमें। वो हमसे प्रभावित नहीं हो रहे, हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं। पहली बात, वो हमसे प्रभावित, वो तो हमारे नजदीक आकर यही देखते, ये भी हमारे जैसे ही है, हम उन्हें नहीं प्रभावित कर रहे। जैसे कल भी कहा था, शायद हम उनकी टीम की ओर से खेल रहे हैं, हमको लग रहा है हम उनकी सेवा कर रहे हैं, पर वो हमें यूज कर रहे हैं अपने कार्य के लिए, अपने वोट के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम उनको फेमस कर रहे हैं, वो हम सोच रहे सेवा, इनको हम ज्ञान में ला रहे हैं, बाबा का परिचय दे, पर वो पहुंचेंगे भी कहां तक पहुंचेंगे? ये काम अच्छा कर रही है, और वो यहां भी जाते और दूसरी जगह भी जाते, और वहां भी कहते हैं कि तुम लोग भी अच्छा काम करो, क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है जीवन का, उनका पार्ट भी उतना है, वो भी ठीक है, पर हम अपना स्वमान छोड़कर उनकी चटुकारिता ना करें। तो ये तो हम स्वमान से गिर रहे हैं ना।
अब कहते हैं तुम भी वीआईपी हो।
हाँ, ये तो हम भूल ही रहे।
अनलिमिटेड भी लगा लो बोले बाबा।
तो कहां थे हम? मनसा सेवा, और लास्ट पॉइंट क्या था कल का? मनसा सेवा, नवीनता। कल जो कहा ना, सेवा में नवीनता, ब्रदरहुड। तो क्या प्रत्यक्ष हो? एक बाप सबका पिता है, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, भगवान आया हुआ है, ये प्रत्यक्षता कहां हुई है? प्रत्यक्षता क्या हुई है? ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही है, यहां तक आए। कब आए हैं? 90 साल के बाद। कब आए हैं? इतनी वीआईपी प्रोग्राम्स और सेवाएं करने के बाद। ये नहीं आया कि यही भगवान है, ये परमात्मा कार्य चल रहा है और यही एकमात्र सत्य है, ये नहीं आया है। अर्थात हमें अपनी टेक्निक विधि चेंज करने की आवश्यकता है। टेंशन का मूल कारण क्या है? मन पर राज्य न होना। टेंशन फ्री बनने की मुख्य युक्ति क्या है? दृढ़ संकल्प और मन का मालिक बनना। बाप दादा बच्चों का चेहरा कैसा देखना चाहते हैं? टेंशन फ्री, कमल पुष्प, खिला हुआ गुलाब। वर्तमान समय में सेवा का मुख्य माध्यम क्या है? मनसा, चेहरा और श्रेष्ठ चलन द्वारा सेवा। टेंशन फ्री आत्मा समाज के लिए क्या बनती है? आधार मूर्त। एक पिलर का चित्र बनाओ और लिखो, मैं आधार मूर्त, मैं पिलर हूं। एक पिलर बना दो और नीचे लिखो, मैं आधार मूर्त हूं। अगले सीजन तक बाप दादा ब्राह्मण परिवार में क्या देखना चाहते हैं? टेंशन का नाम निशान समाप्त। इस पूरी मुरली का मुख्य संदेश, लास्ट प्रश्न, तो क्या क्या देखा? सबसे पहले स्वराज्य अधिकारी में 5 बातें हमने देखी। सेक्शंस में डिवाइड कर दिया उसको, मन बुद्धि संस्कार शरीर कर्मेंद्रिय। एक दूसरा हमने देखा टेंशन फ्री, जो कल देखा था टेंशन फ्री बनने की ये 10 विधियां कल की सारी मुरली। फिर समय और संकल्प को सफर करना, वेस्ट नहीं करना है टाइम, अपने ही 10 साल को देखो, पिछले 10 साल 2016 से लेकर 2026 तक हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, किसमें, गॉसिप्स में, यूट्यूब्स में, शॉर्ट्स रील्स में, बातों में, इधर उधर की चर्चा में, ये सारा समय अगर सोचो हमने मुरली स्टडी में लगाया होता तो क्या होता,
ऊपर पहुंच गए होते।
अगर ये टाइम हमने मुरली चर्चा में लगाया होता तो जैसे अभी चर्चा चल रही है, सोचो अगर ये सारा वेस्ट जो किया वो डिस्कशन में लगा दिया होता तो आज हमारी धारणाएं कुछ और होती,
गलत धारणाएं नहीं होती, धारणाएं गलत नहीं होती।
मन से सेवा द्वारा दुखी आत्माओं को, तो मन से सेवा के लिए क्या कहा हमने, 3 बार मन से सेवा करनी है, दोपहर में जब सोने, ये सोने का सिस्टम हमको यहाँ आके पता चला, दोपहर में सोना होता है करके, हम लोगों की उधर ड्यूटी होती थी 8 से 8, दिन भर सोना, दिन भर सेवा करते रहना। यहाँ आए तो पता चला अच्छा दोपहर में सोना होता है, यहाँ एक नया शब्द पता चला, वो भाई जी का है, वो रेस्ट पर है, ये नया पता चला इधर,
नहीं सोने कमर सीधी कर रहे हैं,
कमर सीधी कर रहे हैं। ये यही पता चला, बाहर दुनिया में कोई नहीं सोता है, जॉब में रहता है, आईटी में कंप्यूटर पे सोते हैं क्या वो लोग, बादशाह बनने की प्रैक्टिस, चलो ठीक है। फिर अपने जीवन से सबके आधार मूर्त बनो, तो ये थी आज की अव्यक्त मुरली। कल जो एग्जाम हुई थी परसों, उसमें हमने कहा था 2 लोग हैं पर 4 लोग और थे, 5 लोग जो मधुबन से है कुल वाले, क्योंकि उनको बाद में एक क्वेश्चन करेक्ट करने के बाद आया था, संगीता बहन, नम्रता बहन, त्रिवेणी बहन, सपना बहन, दीपा बहन। ओम शांति।
चिंतन कर चिंतन, मंथन 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 कर मंथन, मन की आंखें खोल कर मनन, चेतना के द्वार खोल कर गमन, चिंतन 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 कर चिंतन, मंथन 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 कर मंथन, स्वस्वरूप का चिंतन कर, स्वयं का दर्शन, स्वमान का चिंतन कर, स्वयं का अभिनंदन, स्वगुणों का चिंतन कर, स्वयं में संवर्धन, स्वशक्तियों का चिंतन कर, जीवन में धारण, स्वधर्म का चिंतन कर, पल पल स्मरण, स्वलक्ष्य का चिंतन कर, स्वयं को समर्पण, चिंतन चिंतन जी।
चिंतन भस्म कर माया के व्यसन चिंतन 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 कर चिंतन मंथन 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 कर मंथन स्वउन्नति का चिंतन कर संपूर्णता का आह्वान स्वस्थिति का चिंतन कर स्वयं का स्वयं निर्धारण स्वसंस्कारों का चिंतन निज में हो देवता का आकर्षण स्वदर्शन चक्र का चिंतन पावन हो सृष्टि का कण कण स्व अलंकार का चिंतन हर दिन हो नूतन चयन स्वविशेषताओं का चिंतन हो चिंतन मंगलम मन की शिव बाबा का स्मरण